श्रीमद् भगवद गीता यथारु अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 18। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये है हमारे यात्रा में चौराहा। मैं से चौराहा श्लोक बोलूंगा, क्यों? क्योंकि बताता है कि किस प्रकार से जीव विभिन्न गुणों का संग करके किन किन गंतव्यों को प्राप्त होता है। तो जरा देखेंगे अध्याय 14 का 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण क्या कहते हैं पहले जरा उसको हम देखेंगे, फिर श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। वो कहते हैं कि अब इस श्लोक में बताया जाएगा कि विभिन्न प्रकार के गुणों में स्थित रहने से किस प्रकार से उच्चतर, मध्यम और निम्न गंतव्य प्राप्त होते हैं। यहां पे वृत्ति शब्द समझना चाहिए, शब्द वृत्ति का आया नहीं है, आया है जगन्न गुण वृत्तिस्था। तो जो वृत्ति तमस के शब्द में आया है, जगन्न गुणी वृत्ति स्था मतलब तमोगुणी वृत्ति वाला कोई व्यक्ति है, तो ये वृत्ति शब्द है ये सतोगुण और रजोगुण में भी आएगा। ये शब्द है वृत्ति मतलब प्रवृत्ति, कार्य करने का ढंग। तो जो लोग सत्व में स्थित हैं, सत्वस्था अर्थात सात्विक वृत्ति में स्थित हैं, वह सत्य लोग तक जा सकते हैं, जो ब्रह्मा जी का लोक है। इस बात पे निर्भर करता है कि उनके चित्त में सत्व का कितना मात्रा बढ़ी है। जो लोग रजगुण में स्थित होते हैं वह ब्रह्मांड के बीच वाले भाग में रहते हैं और वो मानवों में जन्म लेते हैं जिसमें पाप और पुण्य मिश्रित रहता है। वह विभिन्न प्रकार के मानवों के रूप धारण करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि उनके चित्त में कितना रजगुण है। और जो तमगुण से प्रभावित रहते हैं, जो कि अन्य गुणों से जघन्य है, यहाँ पे लिखा हुआ जघन्य मतलब अन्य गुणों से वो निकृष्ट है, तो इस प्रकार के आचरण में, तमोगुण के आचरण में लगातार स्थित रहने के कारण वह जानवर, पक्षी या फिर पेड़ इत्यादि भी बन सकते हैं। तो उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना तमोगुण की वृत्ति में स्थित है। तो तमस का अर्थ है कि वह प्रायः तमोगुण में ही स्थित होते हैं, अर्थात जो लोग उच्चतर गुणों में हैं और कभी कभी अगर तमोगुण से को प्रदर्शित करते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वह जानवर क्यों नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि तमोगुण जो है उनमें लगातार नहीं बना रहा है, तमोगुण की वृत्ति नहीं है, लेकिन कभी कभी वो तमोगुण से प्रभावित हो गए होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहां इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। अब देखिए, यही वैज्ञानिकों के घोर तमोगुण का स्पष्ट लक्षण है कि वो कहते हैं कि पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन है ही नहीं। कितना घोर तमोगुण है! क्या भगवान पूरे जगत को खाली बनाए हुए हैं? क्या व्यर्थ के लिए रचना की है? तो इस प्रकार से तथाकथित वैज्ञानिक भी तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव के कारण इस प्रकार की विवेचना करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बस अगर जीवन है तो केवल पृथ्वी में है। लेकिन यहाँ हम भगवद गीता के द्वारा समझ रहे हैं कि उच्चतर लोकों में, जो पृथ्वी के ऊपर वाले लोग हैं, उसमें सात्विक लोग जाते हैं, और जितना सतोगुण बढ़ेगा तो जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक वहां तक पहुंचते हैं, और कभी कभी तमोगुणी लोग सीधे पहुंचने का प्रयास करते हैं तो भगवान की व्यवस्था से उन्हें गिरना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हो रावण के केस में। रावण स्वर्ग में तक जाकर के स्वर्ग तक वो
सीढ़ी बनाना चाहता था ताकि पुण्य करने की जो विधान है, पुण्य करके जो स्वर्ग प्राप्ति होती है वो प्राप्ति ना हो, स्वर्ग प्राप्ति ऐसे ही हो जाए बिना पुण्य करके। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अंततो गत्वा टूट जाना पड़ा। ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, ये भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा नहीं बनाई गई। जो सत्वगुणी व्यक्ति है वही स्वर्ग जाकर के सुख भोगने का, स्वर्गीय सुख भोगने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। और अधिक सत्व गुण उसमें बढ़ता है तो वह और उच्चतर लोकों में जाने के योग्य बनता है, जहां पे सुख की मात्रा और अधिक होती है। जितना स्वर्ग में सुख है वो यहाँ के सुख से हजारों गुना है। इस बात को भगवान गीता में बोलते हैं, स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग में महान भोग प्राप्त होते हैं। तेत्वम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वहां स्वर्ग में जाकर के पुण्यात्मा लोग महान भोग की प्राप्ति करते हैं। उससे भी श्रेष्ठ है जनलोक, उससे भी श्रेष्ठ है तपलोक, और इस प्रकार से महरलोक, और फिर उससे भी श्रेष्ठ है ब्रह्मलोक, जहां उत्तर उत्तर सुख की वृद्धि होती जाती है। तो उस पर, इस बात पर निर्भर करता है कि किस लोक में लोगों ने कितना सत्वगुण की वृद्धि कर ली है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सत्व तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते, इसकी चर्चा हमने भी कर ली थी। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि जो रजोगुणी व्यक्ति है उसने रजोगुण का संग किया है, प्राय रजोगुण का संग किया है, इसलिए वह वो इस जन्म में बहुत धनी व्यक्ति बनता है या फिर राजा बनने का उसको मौका मिलता है। ये समझ लेना चाहिए कि इस जन्म में जो व्यक्ति भोग रहा है वो विगत किए गए जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं वो सारे तो हम भोग भी नहीं पाते। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसको एक महीने के बाद ही सैलरी मिलती है, तो लेकिन फिर भी व्यक्ति को सही ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको अपना सत्वगुणी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, भक्तिमय जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए ताकि आगे उसकी सदगति हो। यहां पर निम्नतम गुण तमोगुण, हाँ एक और बात है कि अगर कोई व्यक्ति रजगुणी है, वो धनी परिवार में पैदा हुआ है, तो यह भी संभावना है कि वो इंद्र तृप्ति के कार्य में लग जाए और उसके द्वारा वो और तमोगुण का संग करने लग जाए और इस प्रकार से उसकी अधोगति भी हो सकती है। तो इसलिए सोचना नहीं चाहिए कि मैं अगर रजोगुण में भी हूं तो चलेगा, बढ़िया है, मानव जीवन तो मिलेगा ना, लेकिन ध्यान देना होगा कि मानव जीवन के जो कष्ट हैं या किसी भी योनि के जो कष्ट हैं वह तो इस जगत में हमेशा रहते हैं। यहां पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित कहा गया है। अज्ञानता विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। वह यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसर्पों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को यह अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। यहां पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तो आप देखेंगे बड़ा स्पष्ट रूप से श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका को श्रील प्रभुपाद यहां समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत तमस से वो मतलब कवर अप हो जाए या ढक जाए तो वो बड़ी खतरनाक बात नहीं, लेकिन अगर तामसिक वृत्ति ही प्राप्त कर ली है, मांस खाना, शराब पीना, इस प्रकार से गलत सलत कार्य करना, इसी में अगर वो लिप्त रहा तो फिर उसकी अधोगति होना निश्चित है। और जब एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण है, देखिए अभी जाड़े का समय है, तो यदि आपको बोल दिया जाए कि आपको रात में बाहर खड़े रहना है तो बड़ा कष्ट होगा। स्वेटर पहन के भी खड़े होंगे तो बड़ा कष्ट होगा, लेकिन पेड़ बाहर खड़े रहते हैं और बड़े सुखी रहते हैं। तो ये दिखाता है कि पेड़ के शरीर में जो जीवात्मा है वो इतना घोर तमोगुण में से आच्छादित है कि सोचता है वो ठंड को भी अच्छा मानता है और वो धूप होती उसको बड़ा अच्छा मानता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि वो हरा भरा है, वो खुश है। तो इस कारण से हम देख सकते हैं कि तमोगुणी जीवन में व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, जीव समझ ही नहीं पाता है कि उसके लिए सुख क्या है। तो सुख की परिभाषा भी व्यक्ति के गुणों के प्रभाव पर निर्भर करती है कि उसका चित्त किस गुण से प्रभावित हो रहा है, उसके अनुसार उसका जीवन में सुख होता है और उतनी मात्रा में होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सत्वगुणी बनने का अवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है, लेकिन जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा लाभ है कि व्यक्ति चाहे किसी भी गुणों में स्थित क्यों ना हो, घोर तमोगुण में भी क्यों ना स्थित हो, अगर वो कृष्ण भावनामृत की विधि का श्रवण कीर्तन का अभ्यास करना भगवान के संबंध में और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना अगर इस विधि को पकड़ता है तो क्रमशः सत्वगुण का विकास करके भगवत धाम की प्राप्ति करने के योग हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा वरदान है क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि बहुत सहज होती है। जिन कार्यों को करने का हमारा सहज अभ्यास है उन्हीं को कृष्ण के लिए करना हमें सीखना होता है और इसके द्वारा हमारी चेतना शुद्ध होती है, गुणों के द्वारा हम गुणों के प्रभाव से हम क्रमशः मुक्त हो जाते हैं और फिर भगवान की भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। न सिर्फ हम केवल उच्चतर लोकों तक जाने के लिए योग्य बनेंगे अपितु भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाते हैं। तो कितना बड़ा लाभ है।